Brothers and sisters, Jai Bhim. Can everybody see me? Can everybody hear me? Can everybody hear Kumar Ajiv? I was though. You need to speak up quite close to it. It's not a very sensitive mic. Acha? So, brothers and sisters, we've begun our Dhamma Kranti training camp. And we've begun to have our experience, our temporary experience of the new society. And I must admit, I'm already very, very impressed. To me, it seems as if this retreat is just carrying on from the previous one. There's a very still, very serious atmosphere. And quite quiet. It's a miracle for 620 Indians to come together so quietly. English men, you wouldn't hear anything. Because they don't talk to each other. But there's a very, very pleasant, very positive atmosphere already. And if we go on like this, we'll go deeper and deeper, and we'll take the Dhamma Kranti further forward. So this morning I want to explore what we mean by Dhamma Kranti. And how we carry the Dhamma Kranti forward. So the Dhamma Kranti is a revolution, a personal revolution, a social revolution to bring about the new society. To bring about the new society. So, what is the new society? Well, in order to understand what the new society is, we need to understand what the old society is. This idea of the new society was, of course, developed by Baba Sahib. And he developed it in contrast to what he found in India at that time, in the earlier part of the 20th century. So he found a society that was unequal. In which there was a system of graded inequality. In which people were graded according to their birth. So there was an attitude of inequality. And that had very strong economic implications. And it meant that one individual did not respect the other. So he found a society which was unequal. He found a society which was not free. People were not free to live where they wanted, to eat what they wanted, with the people that they wanted.
جہاں رہنا ہے اس کے لیے, جو کھانا ہے اس کے لیے, اور جن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اس کے لیے ایسا کرنے کے لیے سوتنتر نہیں ہے.
Well, they weren't even free to go where they wanted.
اور انہیں جہاں جانا ہے اس کے لیے بھی وہ سوتنتر نہیں ہے.
And they weren't free to marry who they wanted.
اور جس کے ساتھ وواہ کرنا ہے اس کے لیے بھی وہ سوتنتر نہیں ہے.
People were defined by their birth and were confined by their birth.
لوگوں کو جنم سے نشچت کیا جاتا تھا اور جنم سے ہی انہیں باندھ کر رکھا جاتا تھا.
Then there was no fraternity in society.
سماج میں بندھتو بھی نہیں تھا.
Because society was graded and sorted into different communities, there was no fraternity.
تو سماج کی اونچ نیچتا میں نشچت ہونے کی وجہ سے اس میں بندھتو نہیں تھا.
People were divided against each other.
لوگ ایک دوسرے کے خلاف
وبھاجت ہو چکے تھے. Each community competing with the others.
ہر سماج دوسرے کے ساتھ سپردھا کر رہا تھا.
That was the state of society at that time.
اس سمے سماج کی یہ اوستھا تھی.
There's been a big improvement since then.
تب سے کافی بڑے بدلاؤ آئے.
But still, it's a reality in India today.
پھر بھی آج بھی یہ بھارت میں یہی بات صحیح ہے.
In some parts of India, in some villages in India, for instance, there's still the old society in full force.
تو بھارت کے کچھ حصوں میں ابھی بھی جو پرانی سماج ویوستھا ہے پوری طاقت سے کاریہ کر رہی ہے.
And the attitudes of the old society still permeate the whole of Indian society.
اور یہ جو درشٹیکون ہے سماج کا یہ پورے بھارتی سماج پہ چھایا ہوا ہے.
So that is the old society that the Dhamma Kranti is trying to change.
اور اسی پرانے سماج کو دھمہ کرانتی بدلنا چاہتی ہے.
And it's trying to change the old society into the new society.
اس پرانے سماج کو نئے سماج میں پریورتت کرنے کا کام یہ دھمہ کرانتی کرتی ہے.
So it's fairly obvious now what the new society is.
اس لیے یہ کافی سپشٹ ہوا ہے کہ نو سماج کیا ہے.
It's a society in which there is an equality of respect.
یہ ایسا سماج ہے جہاں پر سمان کی سمتا ہے.
Everybody acknowledges everybody else as a human being.
ہر ایک ویکتی دوسرے ویکتی کو منشیا پرانی کر کے دیکھتا ہے.
Everybody has respect for every other member of society.
ہر ویکتی کو ہر سماج کے ہر دوسرے ویکتی کے بارے میں سمان.
The new society is one in which there's liberty.
نو سماج ایسا ہے جس میں سواتنتر ہے.
In which people are free from coercion.
اس کا مطلب
coercion from force, from being forced.
کسی کی زور زبردستی سے لوگ مکت ہیں.
Nobody is trying to make them do something that they don't want to do.
اور کوئی بھی کسی کو زبردستی سے کوئی کام نہیں کرنے لگا سکتا.
Then it's a society of fraternity.
اور یہ ایسا سماج ہے جہاں پر بندھتو ہے.
There's a sense of all being part of one family.
اور ایسی بھاونا ہے ہر ایک کی جیسے کہ ہم سبھی ایک ہی پریوار کے سدسیہ ہیں.
And there's love and well wishing between each member of society.
اور سماج کے ہر ویکتی کے بیچ میں پریم ہے اور ایک دوسرے کے پرتی سدبھاونا.
That's what the new society is.
اور یہی نو سماج ہے.
That's what the Dhamma revolution is trying to bring about.
اور یہی نو سماج جو ہے دھمہ کرانتی بنانا چاہتی.
And that's what we're going to try to bring about here together.
اور یہی بات ہم یہاں پر ایک ساتھ آپس میں آ کر کرنا چاہتے ہیں.
We're going to try to live the Dhamma Kranti.
اور ہم اس دھمہ کرانتی کو جینا چاہتے ہیں.
We're going to try to create the new society.
اور ہم نو سماج نرمان کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں.
Actually, we've already begun.
واسطو میں ہم نے پہلے ہی شروعات کر دی ہے.
Already I can feel that liberty, equality and fraternity are here.
پہلے ہی ابھی سے میں اس بات کا انوبھو کر رہا ہوں کہ یہاں پر سمتا سواتنترتا اور بندھتو ہے.
Already we're beginning to create Baba Saheb's new society just here within the boundaries of this retreat center.
اس شبیر کیندر کی سیماؤں کے اندر ہم پہلے سے ہی بابا صاحب کی اس نو سماج کے تتووں کو لاگو کر رہے ہیں.
Well, for instance, we have equality here.
اداہرن کے لیے ہمارے یہاں پر سمتا ہے.
As human beings, we're all equally valuable.
منشیا پرانی کر کے ہم سبھی لوگ ایک سمان روپ میں ملیوان ہیں.
I'm very pleased to know that there are people from different communities here together.
مجھے بہت آنند ہوتا ہے کہ یہاں الگ الگ سماج سے لوگ آئے ہوئے ہیں.
And that's a very important thing.
اور یہ بہت مہتوپورن بات ہے.
The Dhamma is not just for one community.
دھمہ کیول کسی ایک سماج کے لیے نہیں ہے.
It's for everybody in India, everybody in the world.
یہ بھارت کے ہر ایک کے لیے ہے, دنیا کے ہر ایک کے لیے.
It doesn't matter what our community is, what our background is.
ہم کس سماج سے آتے ہیں, ہماری پشتبھومی کیا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
We can recognize each other as of equal value, of equal worth.
हम एक दूसरे के को एक समान मूल्य से एक समान अर्थ के अर्थ से पहचानते हैं.
So I'm very pleased indeed that we come together in that spirit of equality.
और इसलिए मुझे बहुत आनंद होता है कि समता की इस चैतन्य के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं.
And there are people from different states here.
और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए हैं.
I just quickly added up and I think there are people from 11 different states.
और मैंने अभी जमा करने की कोशिश की, मुझे लगा कि यहाँ पर 11 राज्यों से लोग आए हुए हैं.
How many states are there in India?
भारत में कितने राज्य हैं?
28. So we're about a third of the way there.
तो हम अभी तक एक तृतीयांश तय कर चुके हैं.
I shall be really happy when we've got 28 different states represented here.
और मैं तो और खुश हो जाऊंगा कि अपने शिविर में 28 राज्यों के से लोग आए.
29, of course, if Vidarbha becomes a separate state. So, and we haven't got many nationalities here. But we've got three different nationalities. There's about 620 Indians. And, well, there are two Englishmen. But Manjushura was actually born in South Africa and has a South African passport too. So three different continents are here. So yes, we're bringing people together. And we're all equal. We're all human beings. We all have the same potential. We all like to be happy. We all don't like to be in pain. So we are here in equality. And I hope that during the course of this retreat we'll have an experience of that equality on a very deep level indeed. And then we come together in liberty.
स्वतंत्रता से यहाँ पर आए हुए.
We've all chosen to come here.
हम सभी लोगों ने तय किया है कि हम यहाँ आएंगे.
Everybody's come here because they wanted to be here.
सभी लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वो यहाँ आना चाहते हैं.
In fact, there's a great deal of eagerness, a great deal of keenness to be here.
वास्तव में देखा जाए तो यहाँ आने के लिए बहुत सारे लोगों की उत्सुकता थी.
I've come nearly 8,000 miles to be here.
यहाँ मैं 8,000 माइल से दूरी से आया हूँ.
And people have come, well, much longer journeys in time than me.
और मुझे लगता है कि समय के अनुसार देखा जाए तो मेरे से भी लंबा सफर तय करके लोग यहाँ पर आए हुए हैं.
I got here quicker from London than the people from Delhi would have got here.
लंदन से मुझे यहाँ आने के लिए कम समय लगा, लेकिन दिल्ली के लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए ज्यादा समय लगता है.
But we've come of our own free will to be here together.
लेकिन फिर भी हम अपनी खुद की इच्छा से यहाँ पर आए हैं स्वतंत्रता.
And we're staying here because we want to be here.
और हम यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि हम यहाँ रुकना चाहते हैं.
Everybody's free.
हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है.
If you don't want to be here, you're free to go.
अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो आप खुले हैं, मुक्त हैं जाने के लिए.
If you want to stay, you're free to stay.
अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुकने के लिए भी स्वतंत्र हैं.
And yes, we would like everybody to participate in what we do.
और हमें आनंद होता है सभी लोग अगर सहभागी होते हैं.
But it's your choice.
लेकिन फिर भी ये आप चुनते हैं.
You are free.
आप स्वतंत्र हैं.
And we won't be forcing you in any way.
और किसी तरह से हम आप पर कोई जोर जबरदस्ती करने वाले नहीं है.
And then, well, we're going to be living together. We've started to live together in fraternity. I've been very, very impressed immediately by the cooperation and harmony that there's been amongst us. Quite spontaneously, quite easily and naturally, everybody's just working together.
बहुत ही उत्साह से, बहुत ही उत्स्फूर्तता से और स्वाभाविकता से सभी लोग साथ में काम कर रहे हैं.
We're living in harmony, we're cooperating with each other.
हम सुसंवाद में साथ में हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छा सहकार्य कर रहे हैं.
That's the spirit of fraternity.
और ये बंधुत्व का चैतन्य.
There's love and well-wishing between us all.
हम सभी के बीच प्रेम और सदिच्छा है.
And we're all brothers and sisters in the Sangha.
और हम सभी संघ में बंध भाई और बहन हैं.
So in this way, we have already begun to create the new society.
इस तरह से हमने शुरुआत कर दी है नव समाज निर्माण करने की.
And we'll be living in that new society temporarily for 1 week.
और तात्कालिक स्वरूप में एक सप्ताह के लिए इस नव समाज में हम रहने वाले हैं.
And that'll be a very, very positive experience, I'm sure.
और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही सकारात्मक अनुभव होगा.
So we can just enjoy it.
ताकि हम केवल उसका आनंद उठा सकें.
We don't have to do anything but just enjoy living in the new society.
हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. हम इस नव समाज में आनंद उठाने की ही आवश्यकता.
There's nothing for us to, no work for us to do except for just cooperating to run things.
हमें कोई काम करने के लिए नहीं है. केवल इतना है कि हम सहकार्य करते हैं एक दूसरे को ताकि यहाँ की बातें चलती रहे.
We can just enjoy being together in the light of the Dhamma.
हम केवल इसमें आनंद उठा सकते हैं कि धम्म के इस प्रकाश में आप उसमें आनंद लेने का.
And it's very, very enjoyable while it's happening.
और जब ये सब हो रहा है तो ये बहुत ही सुखद बात है.
And after it's happened, well, we still have a lot of inspiration from it.
और ये सब हो जाने के बाद भी इससे बहुत सारी प्रेरणा लेकर हम जाएंगे.
It'll give you a lot of confidence that we can change the world together.
और इससे हमें बहुत आत्मविश्वास मिलेगा और ये आत्मविश्वास मिलेगा कि हम साथ में दुनिया को बदल सकते हैं.
And I hope that it'll be an example to other people of what we can achieve.
और मुझे आशा है कि ये दूसरे लोगों को उदाहरण होगा कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं.
I hope that the whole of India will hear of what we create.
और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा भारत ये सुनेगा कि हम क्या बना सकते हैं.
And that we can give other people this experience over the next years.
और आने वाले सालों में यही अनुभव हम और ज्यादा लोगों को देने वाले हैं.
Because this is an example of what the whole of society could be.
क्योंकि ये उदाहरण है कि पूरा समाज किस तरह से रह सकता है.
So, how does it come about? How can we make it stronger and deeper?
तो ये कैसे निर्माण हुआ और इसे हम और मजबूत और गहरा कैसे कर पाएंगे?
We've started very, very well.
हमने बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत की है.
But we can go much, much further.
लेकिन हम और आगे बढ़ सकते हैं.
We can create the new society on higher and higher levels.
हम नव समाज को और भी ऊंचे ऊंचे स्तर पर लेकर जा सकते हैं.
So how do we do that?
तो हम ये कैसा करेंगे?
How does the Dhamma, the new society come about and how is it sustained?
तो ये नव समाज कैसे निर्माण होता है और कैसे कायम रहता है?
Well, we've talked about Kranti, revolution.
तो हमने क्रांति के बारे में बात की है.
But Baba Sahib and the Dhamma generally doesn't believe in violent revolution.
लेकिन बाबा साहब और धम्म इस हिंसक क्रांति में विश्वास नहीं रखते.
Violent revolution just gets more violence.
क्योंकि हिंसक क्रांति जो होती है उससे ज्यादा हिंसा निर्माण होती है.
When you create something new from by violence, well then you have to keep it by violence.
क्योंकि अगर हिंसा का उपयोग करके कोई नई बात आप निर्माण करते हैं तो उसे कायम रखने के लिए भी हिंसा का ही उपयोग करना पड़ता है.
So the Dhamma revolution is a non-violent revolution.
इसलिए जो धम्म क्रांति है ये अहिंसा क्रांति.
So how do we bring about this new society?
तो इस नव समाज को हम कैसे निर्माण करें?
It what Dr. Babasaheb Ambedkar called the kingdom of righteousness.
बाबा साहब जिसे धम्म राज्य कहते हैं.
How do we bring the Dhammaraja about?
तो इस धम्मराज्य को हम कैसे निर्माण करें?
Well, Baba Sahib said that the Dhammaraja comes about when all citizens or the majority of citizens practice Shila.
बाबा साहब कहते हैं कि धम्मराज्य तब निर्माण होता है जब सभी नागरिक शील का आचरण करते हैं.
So, what Shila is action of body, speech and mind that does no harm to others or oneself.
तो शील क्या है कि काया वाणी और मन की ऐसी कृति है जो स्वयं को और दूसरों को कोई दर्द या नुकसान नहीं दे.
So Shila is an aspect of bandhutva.
इसलिए शील बंधुत्व का ही एक हिस्सा है.
If we act towards each other on the basis of Shila, then bandhutva is there.
अगर हम एक दूसरे के साथ शील की बुनियाद पर का संबंध रखते हैं तो बंधुत्व निर्माण होता है.
We'll see much more about this tomorrow.
तो इसको इसे हम कल और ज्यादा देखेंगे.
But Baba Sahib saw that Shila was the basis for the new society, for the Dhammaraja.
लेकिन बाबा साहब ने इस बात को देखा है कि नव धम्मराज्य के लिए, नव समाज के लिए शील एक बुनियाद है.
In the Buddha and his Dhamma, he makes clear how that comes about.
बुद्ध और उनका धम्म में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये कैसे निर्माण हो सकता है.
He said that two things are necessary.
वे कहते हैं कि दो बातें जरूरी हैं.
That first of all, there's the training of the instincts and dispositions to righteousness.
Training of instinct.
Instincts and dispositions.
Disposition.
the attitudes.
तो वो कहते हैं कि शील का आचरण करने के लिए प्रशिक्षण और उसका आचरण करने की दृष्टि देना ये महत्व की बात है.
If we just don't make any effort, we'll just fall into ashila.
अगर हम प्रयास नहीं करते हैं तो हम सीधे अशील में गिर जाते हैं.
If we don't train ourselves, our behavior will not be in accordance with shila.
अगर हम अपने आप को प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो हमारा आचरण शीलों के अनुसार नहीं होगा.
So we need to train ourselves.
इसलिए हमें जरूरत होती है अपने आप को प्रशिक्षित करने की.
We need to train ourselves so that we live in accordance with shila.
हमें अपने आप को प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है ताकि हम शीलों के अनुसार जी सकें.
So the second point that Baba Sahib made is that we need the courage to stand by what we consider right.
तो दूसरी बात हमें बाबा साहब बताते हैं कि हमें हम जिसे सही समझते हैं उसके उसको धरे रहने के लिए हमारे अंदर धाड़स होना चाहिए.
In other words, we need to be prepared to act in accordance with shila, even if other people are not.
दूसरे शब्दों में शील का आचरण करने के लिए हम पक्के रहना चाहिए भले ही बाकी लोग उसको मान्यता न दें.
We need to be individuals.
हमें व्यक्ति होने की जरूरत है.
That's what's required in order to bring about the kingdom of righteousness.
और धर्मराज्य अगर निर्माण करना है तो इन बातों की जरूरत है.
So Baba Sahib thought we needed to do these two things.
बाबा साहब ने विचार किया था कि हमें इन दो बातों को करना जरूरी है.
We need to train ourselves in shila.
हमें अपने आप को शील में प्रशिक्षित करने की जरूरत है.
And we need to be individuals.
और हमें स्वतंत्र व्यक्ति बनने की जरूरत है.
We need to take responsibility for ourselves.
हमें अपने स्वयं के लिए जिम्मेदारी लेने की जरूरत है.
And do what we consider to be right.
और हमें वह करने की जरूरत है जो हम सही समझते हैं.
No one else can make you into a righteous person.
आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति शीलवान बनने के लिए कुछ नहीं कर सकता.
You have to decide to be such a person for yourself.
आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ता है कि आपको शीलवान बनना.
You have to take responsibility for yourself.
और आपको स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है.
You have to make your own efforts.
आपको स्वयं अपने प्रयास करने की जरूरत होती है.
So that's what we're going to be learning to do, or do even more, during the course of this retreat.
और इस शिविर के दौरान यही बात सीखने की और करने की हम कोशिश करने वाले हैं.
We're going to be learning to train ourselves more deeply in shila.
हम अपने आप को शील में और गहराई में प्रशिक्षित करने की कोशिश करेंगे.
We're going to be learning to be to take fuller responsibility for ourselves.
और हम अपनी स्वयं की और ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश करेंगे.
Baba Sahib had this very, very penetrating insight.
बाबा साहब की दृष्टि बहुत ही गहरी गहन है.
You know that his concerns began with very, very big social political concerns.
बाबा साहब की जो चिंताएं हैं ये बहुत बड़े एक सामाजिक और राजकीय विचारधारा से निर्माण हुए हैं.
He worked so hard to change conditions in India on the social and political level.
बाबा साहब ने बहुत परिश्रम किए भारत की राजकीय और सामाजिक स्थिति बदलने के लिए.
He even was able to frame for India this wonderful democratic constitution based on liberty, equality and fraternity.
और बाबा साहब ने भारत की जो एक सुंदर राज घटना लिखी है वो भी समता स्वतंत्र और बंधुत्व पर आधारित है.
But he knew that wasn't enough.
लेकिन उन्हें पता था कि इतना ही पर्याप्त नहीं है.
He said just before he died that what the world needs is if the world is to be reformed, there needs to be a reform of the mind of man.
बाबा साहब ने अपनी मृत्यु के पहले ये बात बताई थी कि अगर समाज के परिवर्तन के लिए अगर कोई किसी बात की जरूरत है तो मनुष्य के मन का परिवर्तन होना चाहिए.
And he said that this was the greatest thing that the Buddha taught the world.
और वह कहते हैं कि बुद्ध ने दुनिया को बताई हुई यही सबसे श्रेष्ठ बात है.
If we want to reform the world, if we want to change the world, we've got to start with our own minds.
अगर हमें दुनिया को बदलना है तो हमें अपने मन से शुरुआत करनी चाहिए.
If we can reform our minds, we can act in accordance with shila.
अगर हम अपने मन का परिवर्तन कर सकते हैं तो हम शील का आचरण कर सकते हैं.
If we can act in accordance with shila, we can change the world.
अगर हम शील के अनुसार कार्य करते हैं तो हम दुनिया को बदल सकते हैं.
We will act ourselves in a different way.
हम स्वयं अलग ढंग से कार्य कर सकते हैं.
And other people will be inspired by us.
और दूसरे लोग हमसे प्रभावित होंगे.
So during these days we're going to be training ourselves in this reform of the mind.
और आने वाले दिनों में इस मन के परिवर्तन में हम अपने आप को प्रशिक्षित करने वाले हैं.
Of course we're going to be meditating every day.
निश्चित ही हम हर दिन ध्यान करने वाले हैं.
We'll be communicating.
और हम संपर्क करने वाले हैं.
We can be mindful all the time.
और हम हर समय स्मृतिमान रहने की कोशिश.
We'll be listening to the Dhamma.
हम धम्म सुनने वाले हैं.
Talking about Dhamma.
धम्म के बारे में बात करने वाले.
We'll be doing puja.
हम पूजा करने वाले.
All of that will have an effect on our minds.
और इस सभी बातों का हमारे मन पर परिणाम होगा.
And I'm sure that that will in itself bring about a big change.
और मुझे पूरा विश्वास है कि यही इन्हीं बातों की वजह से परिवर्तन आएगा.
But each day we're going to be looking at a different aspect of what is needed in order to bring about the Dhamma revolution.
तो धम्म क्रांति आगे बढ़ाने के लिए, निर्माण करने के लिए अलग-अलग जो उसके पहलू हैं, उनको देखने के लिए हम हर एक दिन बिताएं.
And we'll be trying to see what we can do to bring that about.
और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस परिवर्तन को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं.
We are the revolutionaries.
हम क्रांतिकारी हैं.
If we can bring about the revolution in ourselves, we can change the world around us.
अगर हम अपने अंदर क्रांति ला सकते हैं, तो हमारे इर्द-गिर्द की दुनिया को हम बदला सकते हैं.
So tomorrow we'll be looking at Shila.
तो कल हम शील देखने वाले हैं.
We'll be trying to see how we can practice Shila more deeply.
हम इस बात को देखने वाले हैं कि हम शील का आचरण और समग्रता से कैसे कर सकते हैं.
The next day we'll be looking at liberty.
उसके बाद वाले दिन हम स्वतंत्रता पर देखने वाले हैं.
We'll be trying to see how we can practice liberty more deeply.
हम इस बात को देखने वाले हैं कि स्वतंत्रता का आचरण हम और गहराई से कैसे कर सकते हैं.
And the next day, what will we be doing?
और उसके बाद वाले दिन हम क्या करने वाले हैं?
Equality. Samata. And the next day, Bandhutva.
उसके बाद वाले दिन बंधुत्व.
And then the last day, we'll look at action.
और आखिर दिन में हम कृति के बारे में देखेंगे.
If you like, educate, agitate, organize.
जैसे शिक्षा संगठित हुआ संघर्ष करा. शिक्षा संगठन और संघर्ष.
Not Marathi.
Not Marathi.
So we'll be on that last day seeing how we can put what we've learned into action in the world outside.
So hum inhi baaton ko bahar ki duniya ke sath aacharan mein kaise la sakte hain is baat ko dekhenge.
So we'll be going through the principal aspects of Baba Sahib's revolutionary program.
To Baba Sahib ke jo is kranti ka jo karyakram hai uske kuch angon ko hum dekhne wale hain.
And we'll be seeing how we can train ourselves in each of those.
और हम ये देखने वाले हैं कि इसमें से हर एक बात में हम अपने आप को किस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं.
Now this is a bit of an experiment.
तो ये एक प्रयोग भी है.
It's just an inspiration that came to me.
और ये मुझे आई हुई एक प्रेरणा है.
So it's going to be very interesting to see what progress we can make.
और ये देखना बड़ा मजे की बात होगी कि हम किस तरह का विकास कर सकते हैं इसमें.
And I'm going to need your help.
और मुझे आपकी सहायता की जरूरत है.
So I'm going to ask you to do some work when the days come.
और आने वाले दिनों में आपको भी मैं कुछ कार्य करने के लगाने वाला हूँ.
If we can work out how to train in each of these more deeply, we'll have a very powerful tool for working outside here.
तो अगर हम यहाँ पर किस तरह से कार्य करना चाहिए, अगर हम सीख सकते हैं, तो यहाँ से बाहर जाने के बाद हमारे पास कुछ अच्छे साधन होंगे.
So this is an experiment.
ये एक प्रयोग है.
And all experiments, you don't quite know how they're going to work.
और ये सभी प्रयोगों की बात ये होती है कि ये प्रयोग का अंतिम क्या होगा, अंत क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते.
So I shall ask you at the end whether you consider the experiment to have worked or not.
तो आखिरी में मैं आपको ये पूछने वाला हूँ कि ये जो प्रयोग है, ये हमारे सफलता इस प्रयोग में मिली है या नहीं.
But that's what we'll be doing each day, looking at one aspect of Baba Sahib's principal program.
तो हम यही बात करने वाले हैं, हर दिन बाबा साहब का ये जो कार्यक्रम है नव समाज का, उसके एक एक आयाम को देखने वाले.
So tomorrow we'll be looking at Shila.
कल हम शील देखने वाले हैं.
And our accent will be on trying to see what we can do now in order to develop Shila to a greater extent.
और हमारा विचार यह है कि शील को और गहराई में आचरण करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं.
So we're going to be working quite hard on ourselves.
इसलिए हम अपने आप पर बहुत सारा परिश्रम करने वाले हैं.
We're going to be working quite hard on the only person who we can get to change.
और हम उसी व्यक्ति के लिए ज्यादा कार्य करने वाले हैं जिसे हम खुद बदल सकते हैं.
I often say this.
मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ.
There are many people we would like to change.
बहुत सारे लोगों को हम बदलना चाहते हैं.
We always want to change somebody else.
हम हमेशा ये इच्छा रखते हैं कि वो बदले, दूसरा बदले.
In the family, of course, husband wants to change wife.
परिवार में हमेशा पति पत्नी ने बदलना चाहिए ऐसा सोचता है.
Wife wants to change husband.
और पति सोचती है कि मेरे पति ने बदलना चाहिए.
Child wants to change parent.
और बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप बदलने चाहिए.
Parent wants to change child.
और माँ बाप को लगता है कि बच्चे बदलने चाहिए.
But can you do it?
लेकिन आप क्या कर सकते हैं ऐसा?
No, they won't change. You can't change them. We have an expression in English that you can bring a horse to the water. You can force a horse to come to the water, but you can't make him drink. So you can't force other people to drink. And there's only one person you can get to drink. And who's that? So you're going to be taking the one horse that you can get to drink and getting him to drink. So we hope we'll drink the Dhamma dry. We'll drink everything that the Dhamma has. Of course, the Dhamma is infinite. So we have to drink an enormous amount. But we'll be drinking as deeply as we possibly can. And of course, we'll be working together. So we'll be supporting each other as we drink the Dhamma. So we will be making a very strong personal effort. But we're not going to be doing that alone. As I've said, we will be supporting each other. You know how difficult it is to practice the Dhamma when people around you don't want to. I'm sure some of you have this experience even in your own home. You want to meditate. But nobody else is interested in meditation. So when you're meditating, they keep on talking to you. Oh, they try to get you to do things. You know, the children crawl all over you. And all sorts of things happen because people don't realize what you're trying to do. But here, everybody wants to practice Dhamma. So we will be helping each other, we'll be supporting each other. In this family of 650 members, we'll all be supporting each other. But we won't just be getting support from each other. We'll be getting support from the Buddhas and Bodhisattvas. So let me explain what I mean by that. In the center of the room, we've got an example of the ideal society. The four Buddhas sitting in the center of the room represent the Dhammaraja. They're in perfect communion with each other. They're all different. They've all got their different mudras. So each of them is able to be completely themselves. But they're in perfect harmony. They're sitting in a perfect circle. So they represent the Dhammaraja. There's actually a fifth Buddha there. There's a Buddha in the center. You can't see that Buddha, but you have to imagine that Buddha there. And these are the Buddhas, the five Buddhas of the mandala. In ancient Buddhist tradition, these five Buddhas represented the Buddha's mind. They represent the perfect Sangha. It's as if one Buddha doesn't really tell us what the Buddha is like. When we just see one Buddha, we can't really get inside the mind of the Buddha.
जब हम एक बुद्ध को देखते हैं तो सही में बुद्ध के मन के अंदर हम प्रवेश नहीं कर पाए.
The Buddha's mind is so rich, so full.
क्योंकि बुद्ध का मन इतना समृद्ध है, इतना परिपूर्ण है.
So if we want to understand what the Buddha is like, it's best to represent it by a number of Buddhas coming together.
तो अगर बुद्ध का मन कैसा है, ये अगर हमें समझना है, तो हमें बहुत अलग-अलग बौद्धों को इकट्ठा लाकर उसे समझने की जरूरत है.
They're all aspects, you could say, of Shakyamuni's mind.
हम ऐसा कह सकते हैं कि शाक्यमुनि के मन के ये अलग-अलग अंग हैं.
They're not historical, literal Buddhas.
ये ऐतिहासिक और निश्चित यहाँ जन्म हुए बुद्ध नहीं हैं.
They're symbols representing different aspects of the Buddha mind.
बुद्ध के मन को व्यक्त करने वाले ये अलग-अलग प्रतीक हैं.
Sometimes symbols, sometimes images communicate much better than words.
कभी-कभी प्रतिमाएं शब्दों से बहुत अच्छी तरह से बातें बताती हैं.
If we just look at those Buddha figures, they're saying something to us.
अगर हम इन बुद्ध के प्रतिमाओं की तरफ देखते हैं तो वो बुद्ध हमें कुछ बता रहे हैं ऐसा लगता है.
They're communicating something to us.
वे कुछ हमें बता रहे हैं.
Something of the nature of Buddhahood.
जैसे किसी बुद्ध के स्वभाव की कोई बात हमें वो बता रहे हैं.
Something of the nature of the perfect society.
परिपूर्ण समाज की जो कुछ बातें हैं, स्वभाव है, वो हमें बता रहे हैं.
So it's very good if at times you just come in here and you just sit and look at those figures.
तो कभी अगर बहुत अच्छा होगा आप केवल अकेले यहाँ आते हैं और केवल बुद्ध की तरफ देखते हैं.
And you just ask yourself, well, what are they communicating? What does those images communicate?
और आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि बुद्ध मुझे क्या बता रहे हैं.
And I'm sure that if you do that, you will find something is understood.
और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ऐसा देखते हैं तो सही में वो कुछ बता रहे हैं और आप समझ रहे हैं ऐसा आपको लगेगा.
So we're trying to develop the new society in our own efforts.
और हम अपने प्रयासों से नव समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
But we have before us figures that represent that new society, that transformed mind.
और लेकिन हमारे सामने ये बुद्ध है जो इस परिवर्तित मन से जो समाज निर्माण होता है उसको व्यक्त कर रहे हैं.
And if we open ourselves up to those images, they will help us. They will communicate to us what the perfect mind is like.
अगर हम अपने आप को इन प्रतिमाओं के प्रति खुला कर देते हैं तो वह हमें बताएंगे कि ये परिपूर्ण मन कैसा होता है.
And each of these Buddhas represents the quality that we will be exploring each day.
और हर एक बुद्ध हम जिस एक एक गुण को बता रहे हैं उसका प्रतीक है ये हम देखेंगे.
So the Buddha in the center, the Buddha you can't see, represents Shila.
बुद्ध जो मध्य में है और जिन्हें हम देख नहीं पा रहे अभी वह शील का प्रतीक है.
And that Buddha is called Vairochana.
उस बुद्ध का नाम है Vairochana.
And he's like the sun.
और वो एक तरह से सूर्य के समान है.
Shining equally on everything.
हर बात पर वो समानता से प्रकाशमान होते हैं.
He's the sun of the Dhamma, the sun of Shila.
वो धम्म के सूर्य है, शील के सूर्य है.
So tomorrow we'll be looking at Shila and looking at Vairochana.
और कल हम शील के तरफ देखने वाले हैं, वैरोचन की बात करने वाले हैं.
Then the Buddha, the other side from me, is Akshobhya.
हमारे विरुद्ध बाजू में उस तरफ जो बुद्ध है वह है बुद्ध अक्षोभ्य.
He's touching the earth.
वह भूमि को स्पर्श कर रहे हैं.
So he's very firm, very fixed, very stable.
वो बहुत ही स्थिर है और शांत है.
And he can't be pushed, he can't be forced.
उनको आप अपनी ताकत नहीं लगा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ढकेल नहीं सकते.
So he represents liberty.
तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक है.
Then on this side, facing the lake, we have Ratnasambhava.
अभी इस बाजू में तालाब की तरफ देख रहे हैं, वो बुद्ध है, बुद्ध रत्नसंभव.
And he's holding his hand out in the gesture of giving dana.
और यह बुद्ध दान की मुद्रा में अपना हाथ बाहर फैलाए हुए बैठे.
And he gives to everybody.
और वो हर एक को देते.
He doesn't have any partiality.
वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते.
He's just free giving to everybody.
वो मुक्तता से हर एक को देते.
So he represents equality.
और यह है समता का प्रतीक.
Then facing me, we have the Buddha Amitabha.
और हमारे सामने जो देख रहे हैं वो बुद्ध अमिताभ है.
And he's deep in meditation.
वो गहरे ध्यान में बैठे हुए हैं.
And he's contemplating the Buddha nature of every living being.
और वो हर जीवित प्राणी का जो बुद्ध स्वभाव है उस पर चिंतन कर रहे हैं.
And feeling tremendous love and compassion towards all.
और सभी के प्रति बहुत प्रचंड मैत्री और करुणा अनुभव कर रहे हैं.
So he represents बंधुत्व.
और यह प्रतीक है बंधुत्व का.
Then finally, on this side, facing the ladies, there's Amoghya Siddhi.
और महिलाओं की तरफ जो देख रहे हैं वो बुद्ध है अमोघ सिद्धि.
And he has his hand up in the gesture of a fearlessness, of abhaya.
और उनकी जो मुद्रा है हाथ जैसे अभय दान दे रही है.
And well, he represents action.
और यह है कृति का प्रतीक.
Perfect action.
यह परिपूर्ण कृति का प्रतीक.
Action that always leads to success.
और ऐसी कृति जो हमेशा यश की तरफ जाती है.
So these four Buddhas, five Buddhas will preside over our exploration of the Dhamma revolution.
और ये जो पांच बुद्ध हैं हमारे इस धम्म क्रांति के जैसे केंद्र में बैठे.
And each of them has his own colors, his own symbols.
और हर एक बुद्ध का अपना रंग है, अपना प्रतीक है.
So Vairochana is white in color.
तो वैरोचन जो है अपने रंग में सफेद है.
Akshobhya is blue.
अक्षोभ्य का रंग नीला है.
You see the banners above.
उनके ऊपर के जो कपड़े लटके हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं.
Ratnasambhava is yellow.
रत्नसंभव जो है ये पीले रंग के हैं.
Amitabha red.
अमिताभ लाल रंग.
And Amoghya Siddhi green.
और अमोघ सिद्धि हरा रंग.
So we're going to not only be looking at how we can make a personal effort, we're going to be opening ourselves up to those qualities as represented by the Buddhas.
तो हम केवल व्यक्तिगत प्रयास ही नहीं बल्कि इन बुद्धों द्वारा जो अभिव्यक्त होते हैं अलग अलग गुण उनके प्रति भी हम अपने आप को खुला करने वाले.
This is the way Buddhism works.
इसी तरह से बौद्ध धर्म कार्य करता है.
We have to make a personal effort.
हमें अपने व्यक्तिगत प्रयास करने की आवश्यकता होती है.
We have to work on ourselves.
हमें अपने आप पर कार्य करने की जरूरत होती है.
We have to take responsibility for ourselves.
हमें अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है.
And we'll be doing that through meditation.
और हम इसे ध्यान साधना के माध्यम से.
That's a very, very powerful way of changing yourself.
और अपने आप को बदलने का ये बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है.
And during the course of this retreat, I'm sure you'll get a great deal of benefit from that.
और इन दिनों में हमें इस बात से बहुत ही कुछ फायदा होगा.
If you work hard in your meditation, you will make some real progress.
अगर आप अपनी ध्यान साधना में अच्छा प्रयास करते हैं तो आप सही में कुछ विकास कर पाओगे.
And that will be your effort.
और ये आपके प्रयास होंगे.
And you will get the rewards of your own effort.
और आपको अपने स्वयं के प्रयासों की सफलता मिलेगी.
One of the Buddha's basic teachings was the principle of karma.
बुद्ध के एक मूलभूत शिक्षा है यह है कर्म का सिद्धांत.
What you could say the principle of karma means is that effort is rewarded.
तो कर्म का सिद्धांत यह बताता है कि आपके जो प्रयास है उसका फल आपको मिलता है.
If you make an effort, you get the appropriate effect.
अगर आप सही प्रयास करते हैं तो उसका जो सही फल है आपको मिलेगा.
Of course, it also means that if you act unskillfully, you'll get the unpleasant consequences of that.
दूसरी बाजू भी हम उसकी बता सकते हैं कि अगर हम अकुशल कार्य करते हैं तो उसका जो फल होगा वो भी हमें मिलेगा.
But if you do make efforts in meditation, you will get effects.
लेकिन अगर हम ध्यान साधना में कार्य करते हैं तो उसका परिणाम जो है अच्छा हमें मिलेगा.
We'll be trying to understand the Dhamma.
हम धम्म को समझने की कोशिश करेंगे.
We'll be looking at the meaning of the Dhamma.
हम धम्म का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे.
Mainly through my talks and through groups discussing.
खास करके मेरा स्वयं का प्रवचन और जो गुट में चर्चा हम करेंगे वहां से.
And the more deeply you can understand the Dhamma, the more it will change you.
तो जितनी गहराई से हम धम्म को समझने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप में परिवर्तन होगा.
You'll be changing your ideas.
आप अपनी कल्पनाओं को बदलेंगे.
So that your ideas will be more in tune with the Dhamma.
ताकि आपकी जो कल्पनाएं हैं धम्म के साथ में मिली हुई होगी.
And then you can be trying to be mindful.
और फिर आप स्मृतिमान रहने की कोशिश करेंगे.
We concentrated on this last year.
इस पर हमने पिछले साल एकाग्रता बनाई थी.
So those of you who are here last year, try to put into practice what you learned then.
और पिछले साल जो लोग आप यहाँ पर थे उन्होंने इसे आचरण में लाने की कोशिश की होगी.
But basically, just watch where your body is.
तो मूलतः आप केवल देखिए कि आपका शरीर कैसा है.
Be aware of your body.
आप अपने शरीर के प्रति जागरूक रहिए.
When you're walking, be aware that you're walking.
और जब आप चलते हैं तो इस बात की जागृति रखिए कि आप चल रहे हैं.
Don't just sort of walk along without looking where you're going.
और केवल चलते मत रहिए और ये जाने बगैर कि आप कहाँ जा रहे हैं.
Try to be mindful of each step as it touches the ground.
जैसा आपका हर पैर जमीन को स्पर्श करता है उसकी जागृति रखिए.
try to be mindful of your feelings.
अपनी जो भावनाएं हैं उसके प्रति जागरूक रहिए.
Whether you're happy or sad or anything else.
आप आनंदित हैं, दुखी हैं या और कुछ भावनाएं हैं.
Try to be aware of your thoughts.
अपने विचारों के प्रति जागरूक रहिए.
And try to be aware of your emotions, your desires.
और आपकी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उसके प्रति जागरूक रहिए.
If we can, we're going to be trying to have some silence.
अगर हो सकता है तो हम कुछ मौन रखने की कोशिश करें.
We had to work quite hard last time, but we got some silence.
पिछली बार हमें बहुत परिश्रम करने पड़े, फिर भी कुछ मौन का पालन हो सकता है.
And I hope that we'll be able to get some silence during this retreat.
और मुझे आशा है कि इस शिविर के दौरान कुछ मौन हम शायद पालन कर पाए.
And silence is really good because it gives you an opportunity to look inside yourself.
मौन बहुत ही अच्छा मौका होता है क्योंकि इससे हमें मौका मिलता है अपने अंदर देखने का.
Usually in life you're constantly being demanded of from outside.
वास्तव में बाहर जो हम बाकी जीवन जो जीते हैं तो बाहर से बहुत सारी मांगे हमारे तरफ से की जाती है.
That's the way life works in India.
भारत में इसी तरह से जीवन चलता है.
All the time people are wanting things from you.
हर बार लोग आपसे कुछ बातें चाहते हैं.
All the time you have to work hard to get through your life.
हमेशा अपने जीवन को चलाने के लिए आपको कुछ करते रहना पड़ता है.
You very seldom get a chance to look inside yourself.
और बहुत ही कम बार ऐसा मौका मिलता है अपने अंदर देखने का.
And that's what this retreat gives you the chance for.
और यही मौका ये शिविर आपको देता है.
The trouble is, of course, you've got such a habit of looking outside, it's difficult to look in.
अब समस्या ये है कि बाहर देखने की इतनी आदत हमें लगी है कि अंदर देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है.
And you need to work to do that.
और इसलिए ऐसा करने के लिए हमें कुछ प्रयास की जरूरत है.
But that's how you can make an effort.
लेकिन इसी तरह से आप प्रयास कर सकते हैं.
Just sit in silence sometimes.
तो कुछ समय के लिए मौन में बैठिए.
Just enjoy this very beautiful place.
और इस बहुत ही सुंदर जगह का आनंद उठाइए.
Enjoy the silence.
और जो मौन है उसका आनंद उठाइए.
Listen for the sound of silence.
और जो मौन की ध्वनि है उसे सुनिए.
And enjoy that.
और उसमें आनंद लीजिए.
And in that way you'll see more clearly what's inside you.
और इस तरह से आप और स्पष्टता से देखेंगे कि आपके अंदर क्या है.
If you're going to change yourself, well, you need to know what you are.
तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे हैं.
So we need to spend time just being mindful.
और इस तरह से हमें समय बिताने की जरूरत है स्मृति में.
So in this way we will be working on ourselves.
इस तरह से हम अपने आप पर कार्य करने वाले हैं.
Making a personal effort to change the way in which our minds work.
और हम अपने मन को परिवर्तन करने के लिए जो व्यक्तिगत प्रयास करने वाले हैं, उसे हम देखें.
Seeing what's in your mind and trying to change it in a positive direction.
हमारे मन में क्या है और उसे सकारात्मक ढंग से क्या परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम देखें.
So maybe, for instance, you feel annoyed with somebody in the dormitory where you're sleeping.
उदाहरण के लिए जिस हॉल में आप सो रहे हैं किसी का आपको बहुत गुस्सा आ रहा है.
And maybe they make a lot of noise when they're going to sleep.
और जब वो सोते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं.
Or maybe they snore.
या तो वो घोंघ घुराने लगे.
I hope there's nobody snoring too loudly.
मुझे आशा है कोई भी बहुत ज्यादा आवाज करते तो खुराटे नहीं लेते होंगे.
But maybe somebody's snoring and it annoys you.
और हो सकता है कि कोई कभी खर्राटे ले रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है.
So you just see what's going on.
तो आप अपने अंदर देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है.
You think, oh, look, I'm getting annoyed.
तो देखिए कि हाँ मुझे भी गुस्सा आ रहा है.
And then you can think, well, they're not doing it deliberately.
अब ये व्यक्ति तो कोई जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है.
After all, they're asleep.
सो रहा है.
Kumar Ajiv was snoring a bit last night.
कुमार जी कल रात खर्राटे ले रहे.
But it's not his fault.
तो अभी ये कोई उनका दोष नहीं है.
He was very tired.
वो काफी थके हुए थे.
So you can't feel angry with somebody because they're snoring.
तो आप किसी से गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि वो सो रहे हैं.
So you think, ah, well, he's just obviously very tired.
तो आप देखेंगे कि हाँ ये काफी थके हुए हैं.
It's really good that he's sleeping so deeply.
और ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी गहरी नींद में ये आदमी सो रहा है.
And then you'll feel much better about it and just go to sleep.
और फिर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और आप भी ठीक से सो पाएंगे.
And so in this way you can change the way your mind works.
और इस तरह से आपका मन किस तरह से कार्य करता है उसे आप बदल सकते हैं.
By being mindful of what's in your mind, you can change it.
तो अपने मन में क्या चल रहा है इसकी स्मृति निर्माण करके आप अपने मन को बदल सकते हैं.
So all the time try to watch what's going on. And well, you don't have to have painful negative thoughts. In a sense, if you've got them, it's because you've chosen to have them. So try to notice what's there and change it. And with so many of us living so closely together, we're bound to get a little bit frustrated or annoyed with somebody. So when you notice that, well, just change something inside yourself. And we'll of course be doing the Maitri Bhavana, which is the Bandhutva meditation. So you can use that when you notice yourself getting a little bit annoyed. So we'll be making all that effort. But we'll also be using our imaginations to connect with the Buddhas and Bodhisattvas. If we reflect upon the Buddhas in the center of the room, we'll be able to draw strength from their image. Each of them represents a quality that we want to develop inside us. It's as if all those qualities are already inside us. Sheila is there, liberty is there, equality, fraternity, and skillful action. They're all inside us. They're all there as potentialities of our minds. So we need to bring them out. And we can do that by opening up to the images of the Buddhas. And letting them touch us. And we'll be principally doing that through the puja in the evenings. Each evening we'll be doing a puja of some sort. And I think at least every other night we'll be doing what we call the sevenfold puja. And the sevenfold puja is the evocation of seven different moods or attitudes. We try to develop seven attitudes of receptivity to the Buddhas. Seven attitudes or moods that are receptive to the qualities they represent. So we want to develop Sheila, for instance. Vairochana represents Sheila. So if we do puja towards Vairochana, we prepare our minds for Sheila. So it's easier for us to develop Sheila within us. So that the puja consists of seven different moods or attitudes. So I suggest you're quite conscious about this when you're doing it. Of course, you're free. This is the new society, so liberty is here. If you don't want to do the puja, you don't have to. You can watch others. It's your choice. If you just remain silent, nobody will mind. But if you want to join in, you're very welcome. And if you do join in, I suggest you just watch your mind as you go through the puja.
लेकिन अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि पूजा के दरमियान आप अपने मन की तरफ देखते रहिए
and see what happens to it as you do each section.
और आपके मन में क्या होता है जैसे एक-एक अंग को आप कहते हैं उससे देखिए.
So for instance, the first section is worship, puja.
तो उदाहरण के लिए पहला अंग जो है पूजा.
That means offerings.
इसका मतलब अर्पण कम करके.
So what's it like to make offerings?
तो अर्पण करना कैसा होता?
What do you feel like when you make offerings?
जब आप अर्पण करते हैं बुद्ध को तो आपको कैसा लगता है?
Well, just imagine that you're now offering a flower. To the shrine.
तो आप कल्पना करिए कि आप पूजा स्थान में कुछ अर्पण कर रहे हैं, फूल अर्पण कर रहे हैं।
Well, what state of mind does that bring about?
तो इससे कौन सी मन की अवस्था निर्माण होती है?
Well, briefly, it's a state of openness, of receptivity, of reverence.
तो ये मन की अवस्था है जो खुलापन है, ग्रहणशीलता है, आदर की, सम्मान की भावना है।
That means then you're open to the quality. That the Buddha represents.
इसका मतलब बुद्ध जिस गुणों को व्यक्त करते हैं, उनके गुणों के प्रति आप अपने आप को खुला करते हैं.
And you can more easily develop that within yourself.
और आप बहुत आसानी से आप इन गुणों को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं.
You have to do the work.
आपको ये काम करना है.
But your reverence, your worship makes it easier to do that work.
लेकिन आपका उनका सम्मान करना या पूजा करना इस कार्य करने में आपको थोड़ी सी सहजता निर्माण करता है.
Then next comes salutation.
उसके बाद में आता है वंदना.
So just think, what's it like when you touch your head to the ground in front of the Buddhas and Baba Sahib and so on?
बुद्धा और बाबा साहब के सामने जब आप अपना माथा जमीन पर टेकते हैं, तो आपको कैसे लगता?
What do you feel like?
आपको अपने अंदर की भावना कैसी होती?
Well, of course, you feel that you're recognizing that the Buddha, Baba Sahib, Bhante Sangharakshita, they're your teachers.
तो आपको ऐसा लगेगा कि बुद्ध बाबा साहब या भंते जो है आपके गुरु हैं।
So you're open to what they have to teach.
तो आप उन्हें जो कुछ बताना है उसके प्रति आप खुले कर देते हैं।
You're open to the quality that they're trying to teach you.
और आप जिस गुणों को वह आपको सिखाना चाहते हैं उसके प्रति आप खुले होते हैं।
If they're trying to teach you Shila, you're open to Shila.
अगर वह आपको शील सिखाना चाहते हैं तो आप शील के प्रति अपने आप को खुला करते हैं।
Then the third section is going for refuge.
अब तीसरा अंग है
Going for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha means committing yourself to the Buddha and Dhamma and Sangha as your ideals.
तो शरण गमन मतलब बुद्ध धम्म और संघ को अपने आदर्श करके आप अपने आप को समर्पित करते हैं.
There's no good just being open to the qualities. You have to be committed to realizing them.
तो उनके गुणों के प्रति आदर रखना इतना ही पर्याप्त नहीं है, अपने आप को कुछ प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा उन गुणों को अपने अंदर विकसित करने के लिए.
And then fourthly, we have confession of faults.
और चौथी बात है हमारा पाप देखना.
But of course, we fail.
निश्चित ही हम असफल होते हैं कभी.
We're setting ourselves a high ideal.
हम अपने आप के सामने, खुद के सामने ऊंचा आदर्श रखते हैं.
And we don't always succeed in living up to that ideal.
और उस आदर्श के अनुसार जीने के लिए हम हमेशा सफल नहीं होते.
We're committing ourselves to the precepts.
हम अपने आप को शीलों का आचरण करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं.
And we don't always manage to live in accordance with the precepts.
लेकिन हमेशा हम इन शीलों के अनुसार जी नहीं सकते.
So we need to admit that to ourselves.
और इसलिए हमें जरूरत होती है कि इस शील को इन गलतियों को कबूल करने की.
Indeed, we need to admit it to each other.
और एक दूसरे के सामने इन बातों को कबूल करने की हमें जरूरत होती है.
We need to admit it to the Buddhas and Bodhisattvas.
बुद्ध और बोधिसत्व के सामने इस बात को कबूल करने की हमें जरूरत होती है.
And in that way, we can clear our conscience, our minds.
और इस तरह से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं.
And we'll be able to renew our efforts.
और फिर से अपने प्रयास नए से शुरू करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं.
Then we rejoice in merits.
और फिर हम पुण्यानुमोदन करते हैं.
We appreciate the good qualities that other people have.
दूसरे लोगों में जो कुछ अच्छाइयां हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं.
And that of course means that we're open to them.
और इसका मतलब निश्चित यह है कि हम उन गुणों के प्रति अपने आप को खुला करते हैं.
Then we ask for teachings, the entreaty and supplication.
और बाद में हम याचना करते हैं, जिसे अध्यक्षना याचना करते हैं.
That means we're open to what the Buddhas have to teach us.
इसका मतलब बुद्ध जो कुछ सिखाने की इच्छा रखते हैं उसके प्रति हम अपने आप को खुला करते हैं.
So far the six moods that we've gone through are all to do with receptivity, opening up to the qualities of the Buddhas.
तो अभी तक हमने जो छह अंग देखे हैं, ये सभी की एक गुण है, वो है कि बुद्ध बोधिसत्वों के प्रति आप ग्रहणशील बनते हैं.
But the final mood, this transference of merits and self-surrender.
और आखिरी जो अंग है, ये है पुण्य तथा आत्मभावादि परिचारक.
Doing all this activity gives us very, very positive feelings.
इन सभी बातों को करके आपके अंदर बहुत ही सकारात्मक भावनाएं निर्माण होती
हैं. You could say that when we come together like this on a retreat, we're probably going to experience very positive states of mind indeed.
तो हम जब सभी लोग एक साथ ऐसे शिविर में आते हैं, तो बहुत ही सकारात्मक ऊंची ऐसे मन की अवस्था का हम अनुभव करते हैं.
Well, we could just enjoy those for ourselves.
तो हम अपने स्वयं के लिए इनका बहुत आनंद उठा सकते हैं.
But we want to share them with others.
लेकिन हम दूसरों के साथ उसे बांटकर भी लेना चाहते हैं.
If we have any merits from what we're doing, we want to share them with other people.
जो कुछ हम कर रहे हैं, उससे जो कुछ पुण्य हमें मिलता है, तो हम दूसरों के साथ उसे बांटकर लेना चाहते हैं.
So we finish the puja with that transference of merits.
और इस तरह से अपना पुण्य दूसरों को देकर हम पूजा की समाप्ति करते हैं.
So if you want to, I suggest you just try the puja.
इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि अगर आपकी इच्छा है, तो इस पूजा को करने का आप कुछ प्रयास करें.
Just try to see what effect it has doing it.
और ये देखने की कोशिश करिए कि आप पर इसका क्या परिणाम होता है.
Try to be mindful while you're doing the puja.
और जब आप पूजा करते हैं, तो जागरूक रहने की कोशिश करिए.
And look at the way it affects your mind.
और किस तरह से आप पर यह परिणाम करता है, आपके मन पर यह परिणाम करता है, उसे देखने की कोशिश करिए.
And especially let the mood that is the quality represented by the Buddha of the day come over you.
और हर दिन जिस अलग अलग बुद्ध के बारे में हम देखने वाले हैं, उनके जो गुणों को अपने अंदर आने देने की आप कोशिश करिए.
Vairochana represents Shila, so when you're doing puja to Shila, let Shila be strengthened in you.
तो वैरोचना शील के प्रतीक है, इसलिए जब आप शील की पूजा करोगे, तो अपने अंदर के शील को मजबूत होने दीजिए.
So we'll be doing puja and we'll be making our own personal efforts through meditation and so on.
तो हम पूजा करने वाले हैं और ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत प्रयास भी करने वाले हैं.
So these are the two approaches that we'll be having.
इसलिए ये दो ऐसे दृष्टिकोण हैं हम अपनाने वाले हैं.
Making an effort, opening up.
हम स्वयं प्रयास करेंगे और अपने आप को और खुला करेंगे.
And that will enable us, I think, to really bring about the Dhamma revolution.
और मुझे लगता है कि इसी की वजह से सही धम्म क्रांति निर्माण करने के लिए हमें कुछ मदद होगी.
Each of the Buddhas has a mantra associated with him.
हर बुद्ध में बुद्ध का मंत्र होता है, इसी के साथ संबंधित.
Some of you may not know that in Buddhism there are mantras.
शायद आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बौद्ध धर्म में मंत्र है.
They're not magic formulae.
और ये कोई जादू करने वाले मंत्र नहीं है.
They're not spells.
और ये कुछ क्या कहते हैं, चमत्कार करने वाले मंत्र नहीं.
They're not even prayers to a god.
और ये कोई ईश्वर की प्रार्थना करने वाले भी मंत्र नहीं है.
They're points for meditation.
ये ध्यान साधना से संबंधित है.
They're teachings.
ये एक प्रकार की शिक्षाएं हैं.
And they're enabling us to concentrate on the Buddha and the qualities that Buddha represents.
और ये मंत्र बुद्ध और बुद्ध के जो गुण हैं, उसके साथ संबंध रखने की, जागरूक रहने के लिए हमें मदद करते हैं.
So each day we'll be chanting that mantra and thereby contacting that quality of the Buddha.
और इसलिए हर दिन हम उस मंत्र का पठन करेंगे और उस बुद्ध के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे.
But today our mantra is going to be Om Mani Padme Hum.
तो आज का हमारा मंत्र होगा ओम मणि पद्मे हुम.
And this is the mantra that Baba Saheb put at the end of the puja book.
और ये ऐसा मंत्र है जो बाबा साहब ने लिखी हुई पूजा के किताब में उसके आखिरी में लिखा हुआ है.
Quite a few of you will have heard me talking about this over the last days.
पिछले कुछ दिनों में इस मंत्र के बारे में बोलते हुए आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा होगा.
And apparently on one occasion Baba Saheb said to somebody, instead of namaskar, say Om Mani Padme Hum.
और मैंने अभी सुना है कि बाबा साहब ने किसी को कहा था कि आप नमस्कार कहने के बजाय ओम मणि पद्मे हुम कहिए.
And what does it mean?
तो इसका मतलब क्या है?
Well, Om means the state of enlightenment.
Om मतलब जो बुद्धत्व की अवस्था.
As a goal, as something to aim for.
जिसे जो हमारा ध्येय है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं.
Hum means that realized in our own lives, in our own hearts.
Hum मतलब यही बुद्धत्व जब हमारे हृदय में हम अनुभव करते हैं.
So at the start of the mantra, Om is there, the Buddha is distant from us.
तो मंत्र की शुरुआत है बुद्ध से होती है ओम बुद्ध हमारे सामने
With whom we have become the Buddha.
और हुम से जब उसका अंत होता है जैसे कि हम बुद्ध बने
That's what we're trying to do. We're trying to move from to हुम. Trying to move from to हुम.
तो हम यही करने की कोशिश करने वाले हैं हम ओम से हुम तक आने वाले आने की कोशिश.
Move from the Buddha being distant from us to the Buddha being inside us.
तो बुद्ध हमारे बाहर होने से हम शुरुआत करते हैं और अंत होता है बुद्ध हमारे अंदर होने से.
So the first part of every mantra represents the goal as distant and the last part the goal as realized.
तो हम
The first part represents the goal as distant, and the second part, the last part, the goal as realized.
तो इस मंत्र का पहला हिस्सा जो है हमारा ध्येय दूर है ऐसा व्यक्त करता है, लेकिन उसका जो आखिरी है वो ये ध्येय प्राप्त हुआ ऐसा व्यक्त करता है.
And the middle part is how you move from to the last part.
और इस मंत्र का जो मध्य का हिस्सा जो है इस ओम से हुम तक जो सफर करना है आपको कैसे आप जाने वाले हैं इसे व्यक्त करने वाले
In different mantras the last part is different.
अलग-अलग मंत्रों में जो आखिरी हिस्सा होता है वो अलग-अलग होता है.
But in this mantra of course hung is the end result.
लेकिन इस मंत्र में हुम जो है ये आपका अंतिम फल है.
So mani padme represents how you get from to hung.
तो ये मणि पद्म जो है ये शब्द आप ओम से हुम तक कैसे जाते हो ये मार्ग बताने वाला है.
This is new material, isn't it? I haven't talked about this before.
हाँ, इसके पहले मैंने आपको इस बात को नहीं बताया था.
So, what does mani padme mean?
तो मणि पद्म का मतलब क्या है?
This some of you already know.
तो शायद ये बात आप में से कुछ लोगों को पहले से पता होगी.
So mani is money.
तो मणि मतलब मनी जो.
And padme मतलब padme. Bus? Suspashta? So, what is Padme?
So, Padme kya hai?
Well, Padme is your mind.
Padma, matlab aapka man.
The lotus grows deep in the mud.
Jo kamal hai, wo bahut hi kichad mein, gehrai mein, shuru ugta hai.
It slowly pushes up through the water.
Aur dheere dheere wo apne aap ko pani se upar lata hai.
Then the bud comes clear of the water.
और जो कली है वो पानी के ऊपर आ जाती है.
Then slowly it opens in the light of the sun.
और धीरे धीरे ये कमल जो है सूर्य के प्रकाश में खिल जाता है.
But that's like our minds.
हमारे मन भी इस तरह के होते हैं.
They start down in the mud.
ये बहुत ही कीचड़ से उसकी शुरुआत होती है.
But then they slowly push up.
और धीरे धीरे उससे वो बाहर निकलते हैं.
And when they feel the sun's rays touching them, they begin to open.
और जब उन्हें अनुभव होता है
When the rays of the Dhamma shine upon us, then our minds begin to open. So what happens when the lotus opens? In the center is the money. The jewel is there in the center of the lotus. So the jewel is the jewel of enlightenment. As we've been discussing over the last days, it's the jewel of the bodhicitta. It's the jewel of Shila. It's the jewel of liberty. The jewel of equality, fraternity, and skillful action.
और ये समता बंधुत्व और कुशल कर्म का रत्न है.
So that those jewels are inside our minds.
तो इस तरह के जो रत्न है हमारे मन के अंदर है.
And when we say the mantra, we're reminding ourselves of this fact.
और जब हम मंत्र का पठन करते हैं तो इस बात को हम अपने आप को याद दिलाते हैं.
When we say that mantra as a greeting to somebody else, we're acknowledging that those qualities are inside them.
जब हम इस मंत्र को कहते हैं दूसरों को अभिवादन करते समय तो सामने वाले व्यक्ति में भी ये गुण है इसका हम उसे हम पहचान लेते हैं.
So that's today's mantra.
तो ये आज का मंत्र.
We're remembering that each of us has within us all these good qualities.
हम इस बात को याद करते हैं कि हम में से हर एक में इन गुणों का विकास करने की क्षमता है.
Just saying the mantra won't give you those qualities.
क्य
You have to work. But saying the mantra reminds you of what is within you. And it sort of evokes those qualities. So that's the spirit in which we're going to be practicing over these 7 days. We're going to be sitting here like a whole bed of lotuses. And as the light of the Dhamma rains down upon us, we're going to try to open up. And we're going to try to find within us these qualities which are the basis for the Dhamma revolution. And so this is going to be our Dhamma Kranti. If we all work on ourselves, we can create a new society. And we can create here together a new society. We've got it, but we can make it even deeper. And in that way we will fulfill the message of Baba Sahib. We'll make a big contribution to the transformation of India. And we'll make a contribution to developing the Buddha's Dhamma.